لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. یہاں تک ہم نے ترجمہ پچھلی کلاس کے اندر کر لیا تھا تھوڑی بہت گرامر کے ساتھ. یہاں سے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکرا. بامحاورہ ترجمہ حافظ نظر احمد نے اپنے کتاب میں کیا ہے کہ بس آپ سمجھا دیں اگر سمجھانا نفع دے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ استعمال کیا ہے اس میں فرمایا کہ سو تو سمجھا دے اگر فائدہ کرے سمجھانا. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے، تو سمجھا دے اگر فائدہ کرے سمجھانا. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ نہیں ہے جو کہ ترجمے سے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال لفظی ترجمہ فذکر، دو الفاظ ہیں، پہلا تو ہے فا، ٹھیک ہے، تو بس اس سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فا عاطفہ بھی ہوتا ہے اور اس کو مزید طور نتیجہ کانسیکوینس یا اور بھی اس کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں. تو فا کا ترجمہ پس سے ہو گیا. ذکر، ذکر یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل جو ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ورب کی چار ٹائپس ہوتی ہیں، ماضی مذکر، سوری ماضی مضارع، اور امر اور نہیں. تو یہ امر کا صیغہ ہے ذکر، کہ تو سمجھا. ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک آدمی سے اگر آپ کسی ایک آدمی کو اگر آپ حکم کر رہے ہو کہ تو سمجھا تو ذکر کہیں گے. ٹھیک ہے، یاد دہانی کرانا، یاد دہانی کرا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ان یہاں پر ان شرطیہ ہے، شرط کے لیے جو آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جب بھی اس کا ترجمہ اگر سے کرتے ہیں. ان کے اور بھی استعمال ہوتے ہیں عربی گرامر کے اندر، جیسے ان نافیہ بھی ہوتا ہے نفی کے لیے. ٹھیک ہے، سورۃ الطارق جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان استعمال کیا ہے، ان کل نفس لما علیہ حافظ، آیت نمبر 4 میں. لیکن وہاں پر جو ان ہے وہ نفی کے لیے ہے، اور یہاں پر جو ان ہے وہ شرط کے لیے ہے. تو ترجمہ اس کا بنتا ہے اگر. ٹھیک، نفعت، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے نا وہ ہے نفعت. ٹھیک ہے، نفعت یہ ایک ورب ہے فعل، اور فعل کے اندر اس یہ ٹینس جو ہے نا یہ واحد مؤنث غائب کا ٹینس ہے. نہیں، بے شک نہیں بنتا، بے شک کے لیے ان نہیں ہوتا، وہ انا ہوتا ہے. انا نون کے اوپر تشدید، دو نون ہوتے ہیں اس کے اندر، ان نا یہ صرف ان ہے. جیسے ان شاء اللہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ان ہے نا وہ بھی ان شرطیہ ہی ہے، اگر اللہ تعالی چاہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی والا ان ہے، ان شاء اللہ والا ہی ان ہے یہ. تو نفع ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن فیمینن سنگولر، کہ اس ایک لڑکی نے نفع پہنچایا، اس ایک عورت نے نفع پہنچایا، یا اس ایک مؤنث چیز نے نفع پہنچایا. کیونکہ عورت مؤنث ہوتی ہے، لڑکی مؤنث ہوتی ہے، بڑھیا مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری بھی مؤنث ہوتی ہیں، لیکن چیزیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ اس زبان کے محاورے میں مؤنث بولا جاتا ہے. جیسے اردو کے اندر کرسی کو مؤنث بولا جاتا ہے، اور یعنی اور کیا، تکیہ کو مذکر بولا جاتا ہے. حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں، یہ غیر جاندار چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن اردو زبان میں فکس ہو گیا ہے، بولنے والوں نے فکس کر لیا ہے کہ کرسی کو ہم مؤنث پڑھیں گے اور تکیہ کو ہم مذکر پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ لفظ ہے ذکرا. ٹھیک ہے، ذکرا، یہ ذکرا جو لفظ ہے نا یہ نفعت فعل کا فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ अगर इसकी आप साख्त को देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें, तो ये स्ट्रक्चर कोई एसिनफाइल का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, जो ग्रामर वाले लोग हैं वो कल सुन रहे थे कि साख्त के एतबार से चीज़ जो है ना वो इसम फाइल या इसम मफूल कहलाती है। तो ज़िक्रा जो है वो कोई इसम फाइल नहीं है, लेकिन इस जुमले के अंदर इसका किरदार क्या है? नफ़ाअत ज़िक्रा वाले जुमले में इसका किरदार क्या है? फाइल का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, तो अगर ज़िक्रा फायदा दे, अगर ज़िक्रा नफ़ा दे, ये इसका तर्जुमा बनेगा इन नफ़ाअत ज़िक्रा का। ज़िक्रा होता क्या है? ज़िक्रा जो है वो जिक्र का मसदर है या इस है उसका। ठीक है, जिक्रा का मतलब होता है समझाना। ठीक है, नून अलिफ आखिर में लगा है, तो नून अलिफ जब लफ्ज के आखिर में लगता है तो वो दरअसल मसदरी मानी होता है, मसदरी मानी, बुनियादी मानी, रूट वर्ड। तो अल जिक्रा का मतलब होता है समझाना, टू रिमाइंड या रिमाइंडिंग। इंग्लिश में ना यही चीज ING के साथ बोली जाती है, रिमाइंडिंग। उर्दू में नून अलिफ के साथ बोला जाता है मस्दर वाले लफ्ज को, और अंग्रेजी में ING के साथ बोला जाता है उसको। तो अगर रिमाइंडिंग फायदा दे तो तू रिमाइंड करवा, राइट? तो क्या मतलब है इसका? अकल के पुजारी, अकल का पुजारी इसका क्या तर्जुमा करेगा? इसका क्या, इससे अकली कंक्लूजन निकालेगा कि अगर फायदा नहीं हो रहा हो तो फिर ना समझा। ठीक है ना, बिकॉज ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर काम करना होता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, राइट, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जानते हैं इस बात को, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि फिर वो काम ना कर, उस लूप को एग्जीक्यूट ना कर जो कि कंडीशन के बाद आ रहा है, राइट? तो अकली दलील अगर पकड़ेंगे खाली तो यही समझ में आएगा, लेकिन ये मतलब तो नहीं है इसका। खैर, कौन बताता है भाई मतलब क्या है? अल्लाह ताला की आवाज़ आती है, अल्लाह ताला ऊपर से बोलते हैं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसा होता है? अल्लाह ताला की आवाज़ आती है? किसकी आवाज़ आती है फिर? कि नहीं, ये मतलब नहीं था। किसकी आवाज़ आती है? जवाब दें ज़रा, ये मतलब नहीं है अल्लाह ताला का। खुदा की आवाज़ आती है? नहीं आती खुदा की आवाज़। हमें, हम अपनी बात करते हैं, अगर रसूलुल्लाह की आवाज़ आती है हमें, नहीं आती। रसूलुल्लाह की भी आवाज़ नहीं आती, फिर किसकी आवाज़ आती है? मौलवी की आवाज़ आती है, राइट? मौलवी, ये मौलवी जो होता है ना, ये सिर्फ जनाजे पढ़ाने वाला नहीं होता, ये सिर्फ मस्जिद के अंदर इमामत कराने वाला, मस्जिद का ताला खोलने वाला, मस्जिद में अजान देने वाला या फातिहा खवानी करवाने वाला, ये सिर्फ मौलवी नहीं होता। मौलवी वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए पसंद किया होता है। ठीक है, जिसको के ज़रा इज्जत के साथ हम उलमा कहते हैं, आलिम, उलमा। ठीक है, हर दाढ़ी वाले को मौलवी नहीं कह सकते, तो दाढ़ी रखी तो जी मौलवी साहब बन गए, नहीं। मौलवी साहब जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होते, दाढ़ी रखने से नहीं बन जाता खाली। ठीक है, तो दीन के लिए अल्लाह ने पसंद किया होता है तब मौलवी बनते हैं, ऐसे नहीं। दीन की खिदमत के लिए और दीन की हिफाजत के लिए तो ये होते हैं मौलवी। तो मौलवी की आवाज़ आती है ना, खुदा की आवाज़ आती है, और ना हम जैसों को खुदा के रसूल की आवाज़ आती है। ठीक है ना, इस बात को क्लियर रखें अपने जहन में, इसलिए कि ज़माने में यही सबसे बड़ा फितना है। ठीक है, हर ज़माने के फितने अलग अलग होते हैं ना, तो इस ज़माने का यही बड़ा फितना है कि जी मौलवी की नहीं माननी, बस बाकी सब करेंगे लेकिन मौलवी की नहीं मानेंगे कभी भी। ठीक है, तो भाई पे अगर मौलवी की नहीं मानेंगे ना, तो फिर किसकी मानेंगे? फिर वो दूसरा मौलवी जो है ना उधर, उस तरफ जो मौलवी खड़ा हुआ है, जो उधर की तरफ खींचता है, वही, वो भी एक मौलवी है असल में, लेकिन नेगेटिव मौलवी है। ठीक है, नेगेटिव मौलवी है, वो नेगेटिव की तरफ खींचता है, इसको शीन से कहते हैं शैतान, राइट? तो फिर यही होता है, फदक्किर इन नफ़ात ज़िक्रा का क्या मतलब है, ये मौलवी बताता है हमें, हम 2018 में रहने वाले इंसानों को मौलवी बताता है। ठीक है, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा। ठीक है, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, इसका तर्जुमा क्या बनता है? कि जो डरता है वो जल्द समझ जाएगा। ठीक है, तो लफ्जी तर्जुमा सयज़्ज़क्करु, दो अल्फाज हैं, एक है सीन, सीन का तर्जुमा होता है अनकरीब से। ठीक है, अभी पहले भी आपको बताया था, तो ये सनुक्रियोका के अंदर जो सीन था वो भी यही था, अनकरीब के मानी में। ठीक है, नियर फ्यूचर, ये जो सीन होता है ना, ये नियर फ्यूचर के लिए होता है, और एक और भी लफ्ज होता है सौफा, सीन वाव फा सौफा, वो भी फ्यूचर के लिए होता है और वो भी फेले मुजारे से पहले लगता है, लेकिन वो फार फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है, मुस्तकबिल बईद के लिए सौफा होता है और मुस्तकबिल करीब के लिए सीन होता है। तो अनकरीब यज़्ज़क्करू, वो समझ जाएगा, ठीक है, यानी वो मान जाएगा, समझ जाएगा का मतलब मान जाएगा, ठीक है, बात को समझ जाएगा, और समझने का मतलब ये होता है कि मान जाना। ऐसे समझने का क्या फायदा कि जी जहन में बात तो समझ में आ गई लेकिन मानना फिर भी नहीं है, ठीक है ना, मैं तो ना मानू, मैं ना मानू, राइट, तो फिर ऐसे समझने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ आपके खिलाफ हुज्जत बन जाएगी कि अब तो समझ भी आ गई, अब क्यों नहीं मान रहे भाई, राइट, तो अब तो हुज्जत बन गई ना हमारे खिलाफ। तो यज़्ज़करू का मतलब मान जाएगा, अनकरीब। कौन मानेगा? मैं यख्शा, जिसके अंदर खशियत हो, ठीक है, जो डरता हो वो मानता है, और जो अपने नेकियों के ऊपर नाजा हो और अपने इल्म के ऊपर नाजा हो, अपनी खूबसूरती के ऊपर और अपने जो है वो फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर और अपने डिग्रियों के ऊपर और अपने दोस्तियों के ऊपर, कि जी तो मेरे तो बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्तियां हैं जी, राइट, तो ऐसा शख्स जो होता है ना वो डरता नहीं है, ऐसे शख्स के अंदर एक तकब्बुर होता है, उसके अंदर एक खुद पसंदी होती है, ऐसा शख्स नहीं मानता, राइट। तो अल्लाह ताला ने बात बिल्कुल कंफर्म कर दी, सयज़्ज़करू मन यख्शा, जो अपने अंदर खौफ रखता है, क्या मतलब, जो कि तकब्बुर नहीं करता, जो कि उजब और खुद पसंदी में मुबतला नहीं होता ना, वो मानता है, राइट। तो अब हमारे लिए बात आसान हो गई, अपने गिरेबानों में झांके देख देख लें जी, खौफ है अपने अंदर, डर है कि जहन्नुम में ना फेंक दिए जाएं, अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए, है अल्लाह ताला जो है वो ईमान से महरूम ना कर दें, मौत से पहले ईमान से महरूम ना कर दें, है क्या ये खौफ है हमें? अगर खौफ है ना तो फिर हम मानने वालों में शामिल होंगे, और अगर खौफ नहीं है, बेधड़क अपनी सलाहियतों के ऊपर इतरा करके दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, राइट, तो फिर हमारा मामला बड़ा ख़राब है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया बनाया ना मानने वालों का, उस क्राइटेरिया के ऊपर हम पूरे नहीं उतरते, ठीक है। तो सयज़्ज़क करू मैं यख्शा, तो मन जो होता है वो इससे मौसूला होता है, इसका तर्जुमा होता है जो, और ये यानी दो होते हैं इससे मौसूला, इस वाली कैटेगरी के, एक होता है मन, दूसरा होता है माँ, ये दोनों इससे मौसूला होते हैं और दोनों का तर्जुमा जो से करते हैं, लेकिन फ़र्क इन दोनों में क्या होता है कि माँ गैर ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मन ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अकल वालों के लिए मन और बेअकल वालों के लिए माँ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक बहुत लंबी बहस है तो मैं इसमें अभी नहीं पढ़ूंगा, पहले वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकल का मतलब क्या होता है। खैर, तो मन का मतलब हो गया जो, फिर उसके बाद है यख्शा, खशिया यख्शा, तो ये फेले मुजारे है यख्शा, ठीक है, यफअलू के वजन पर है, यख्शयू असल में था ये, यख्शयू, ठीक है, यख्शयू का मतलब क्या होता है, वो डरता है या वो डरेगा, ठीक है, वो डरता है या वो डरेगा, तो मन के साथ जोड़ करके इसका तर्जुमा वो डरता है, ऐसे करेंगे, ठीक है, यानी जो डरता है, सॉरी, मन के साथ मिला करके जो डरता है, ठीक है। कोई सवाल इस आयत के बारे में, इससे पिछली वाली आयत के बारे में? तो यक्षा जो है फेले मुजारे का सीगा हो गया और प्रेजेंट टेंस के मानी में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, 11वीं आयत, वयतजन्नबुहल अशका, ठीक है, अब दूसरे टाइप के बंदों की बात हो रही है, ठीक है, जो नहीं डरते हैं, तो उनकी बात हो रही है, अल्लाह ताला फरमाते हैं और उससे बदबख्त पहलू तही करेगा, इग्नोर करेगा। तो लफ्ज़ है, पहला तो लफ्ज़ वाव हो गया, वाव आतिफा, जिसका तर्जुमा और से कर देते हैं, यतजन्नबु हा, ठीक है, ये दो अल्फाज हैं, एक है यतजन्नबु और दूसरा है हा, जमीर, जिसको जो जमीर है प्रोनाउन, तो यतजन्नबु क्या है, फेल है, फेल में से कौन सी वाली कसम है, फेले मुदारे है, ठीक है, और मजीद इसकी तफसील जो है वो अभी चूंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो उसमें अभी हम नहीं जाते, तो यतजन्नबु फेले मुजारे है और सीगा इसका वही सिंपल पहला वाला सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब, फेल मुबारे मारूफ, पहला वाला सीधा जो होता है ना टेबल के अंदर, तो वो पहलू तही करता है या वो पहलू तही करेगा, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों, लेकिन चूंकि पीछे जो सीन था ना वो सीन यहाँ पर कंटिन्यू, यानी उस सीन का इफेक्ट यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, अमल कंटिन्यू हो रहा है, तो सयतजन्नबुहा, ठीक है, मफहूम इसका क्या बनेगा या तफसीर इसकी क्या बनेगी, सयतजन्नबुहा, ठीक है, के अंतरी पहलू तही करेगा, कौन पहलू तही करेगा, अल अशका, ये पहलू तही करेगा, ठीक है। अशका क्या होता है, अशका का लफ्ज पहले तो निकला कहाँ से, शकी से निकला, ठीक है, शकी जिसको कहते हैं उर्दू में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शकी का मतलब होता है पत्थर दिल, और जिसका दिल जो है वो सख्त हो, जिसका दिल खराब हो, या जिसकी किस्मत खराब हो, जिसका नसीब खराब हो, जिसका मुकद्दर खराब हो, बदबख्त, बख्त का मतलब होता है मुकद्दर या नसीब, यानी उसके हिस्सा, नसीब का मतलब क्या होता है, हिस्सा, ठीक है, तो बदनसीब जिसके हिस्से में बुरी चीज आई हो उसको बदनसीब कहते हैं, और नसीब का दूसरा लफ्ज जो फारसी में होता है बख्त, ठीक है ना, तो खुशबख्त खुशकिस्मत को कहते हैं और बदबख्त बदकिस्मत को कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि बेसिकली एक ही मानी दे रहे हैं, बदबख्त, ठीक है, तो अशका जो है वो शकी से निकला है, और अशका का जो वर्ड है वो एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या बनता है, सबसे ज्यादा शकी या दूसरों के मुकाबले में ज्यादा ज्यादा शकी, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव टेंस है जिसको के इस्म तफ़ील कहते हैं, ठीक है, ग्रामर वाले जानते हैं, अभी हम इस्म तफ़ील पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे के मुकाबले में किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा हो तो उसको इस्म तफ़ील से रिप्रेजेंट करते हैं, अशकयू, ये असल में क्या है, अशकयू, जैसे अकबरू होता है उसी तरह अशकयू, ठीक है, तो अल अशका द बदबख्त, ठीक है, अलिफ लाम से क्या हुआ, द लग गया इसके साथ, ठीक है, मारफा हो गया, तारीफ लग गई इसके साथ, मारफत डेफिनेटनेस लग गई इसके साथ, तो द क्या कहें, द अनफॉर्चुनेट वन, अशका बड़ा बदबख्त, हाँ बड़ा मतलब दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा बदबख्त, ठीक है, तो ये अशका से ये मतलब है, बड़ा बदबख्त भी इसको आसानी की खातिर कह सकते हैं, तो जो बड़ा बदबख्त इंसान होगा ना वही इस नसीहत की बात से पहलू तही करता है, ठीक है, तो अब हम देख लें कि जी महफिल जिक्र में बुलाते हैं, महफिल बयान में बुलाते हैं, ठीक है, या महफिल जो भी इस तरह की इस्लाह की चीज़ होती है क्लास में बुलाते हैं, राइट, पीछे पीछे भाग भाग करके कहते हैं भाई क्लास ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन है, सिर्फ 1 घंटा है हफ्ते के अंदर, है 3 दिन है, सिर्फ 1 घंटा है, लेकिन नहीं ज्वाइन करते, राइट, और अगर कर भी लें मारे बांधे का तो अटेंड नहीं करते, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, पहलू तही करना, ठीक है, हिदायत की चीज सामने मौजूद है, कुरान समझाया जा रहा है, राइट, खोल खोल के बयान किया जा रहा है, लेकिन नहीं आते, तो इसको क्या कहते हैं, पहलू तही करना, इग्नोर करना, नसीहत से मुंह मोड़ना, तो ये सिफतें पर हमारे अंदर भी है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर सबसे ज्यादा बदबख्त की जो बात करी तो वो कौन है, वो कुफारे मक्का की बात हो रही है, और ये तफसीर में इंशाल्लाह आएगा, तो पहलू तही करेगा इससे बदबख्त नसीहत की बात से, अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा, जो बहुत बड़ी आग में दाखिल होगा, अल्लज़ी इसम मौसूला, जैसे कि शुरू के आयात के अंदर 3 दफा अल्लज़ी आया था, इसका तर्जुमा जो से करते हैं, यस आ, ये असल में था यस लयू, जैसे यफ अलू होता है उसी तरह यस लयू, तो ये क्या बना, फेले मुदारे, क्योंकि यफ अलू फेले मुदारे होता है उसी तरह यस लयू ये भी फेले मुदारे है, और इसका मतलब होता है दाखिल होना, या यानी वो दाखिल होगा या वो दाखिल होता है, ठीक है, सला इसका माजी होता है, सला यसला ऐसे बनता है इसका माजी और मुजारे, यसला का मतलब वो दाखिल होगा, क्योंकि अब जो अशका के बारे में जो बात चल रही है ना तो वो फ्यूचर में हो रही है ना, कि फ्यूचर में दाखिल होगा, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसलेट जो है वो सिर्फ फ्यूचर में कर देंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आग का दाखिला है वो फ्यूचर की बात है, ठीक है, वो तो अभी कयामत तो कायम नहीं हुई है ना, चाहे मुशरिकीन मक्का کا ہی ذکر کیوں نہ ہو، لیکن قیامت تو ان کے لیے بھی قائم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ابھی برزخ کے عذاب کو پا رہے ہیں نا، قیامت کا عذاب تو ان کو نہیں ملا نا، جہنم کا عذاب تو ابھی ان کو نہیں ملا، تو فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یسلا کا ترجمہ فیوچر سے ہی کریں گے. اچھا کس چیز میں داخل ہوگا؟ النارا، نار. نار کا مطلب سب جانتے ہیں آگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نار ہے وہ یسلا کا مفعول بن رہی ہے، یعنی یہ جو لفظ نار ہے یسلا کا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کے بھی اسٹرکچر کو دیکھیں تو کوئی یہ اسم مفعول کا اسٹرکچر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اسم مفعول کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو النار کوئی مفعول کے اسٹرکچر پر تو ہے نہیں، اس کی ساخت پر تو ہے نہیں، تو یہاں پر مفعول کا کردار ادا کر رہا ہے نار کا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم مفعول نہیں ہے، یہ مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے. This is not the object tense, but this is the object in the sentence. ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی ڈسٹربنگ اگر ساؤنڈ ہے تو بتا دیں تو میں کچھ کروں، ادروائز شاید صرف ان کے ساتھ ہوگا. تو الذی یصلی النار، نار کی صفت بیان کری الکبرا، ٹھیک ہے؟ الکبرا یعنی اکبرو کا مؤنث کبرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو زیادہ بڑی عورت ہوتی ہے نا تو اس کو کبرا کہتے ہیں، جیسے خدیجت الکبرا. اسی طریقے سے یہ جو آگ ہوگی نا، یہ آگ جو ہے بہت بڑی آگ ہوگی، دنیا کی آگوں سے زیادہ بڑی آگ ہوگی، تو اس کو الکبرا کا. تو مؤنث کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ نار کا لفظ عربی زبان کے اندر مؤنث استعمال ہوتا ہے، مذکر نہیں استعمال ہوتا، اس وجہ سے نار کی صفت بھی مؤنث لے کر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الذی یصلی النار الکبرا، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. اشقا بھی اسم تبدیل کا صیغہ تھا اور کبرا بھی اسم تبدیل کا صیغہ ہے، لیکن وہ مذکر تھا، یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلوں، کوئی سوال ہے؟ اچھا نیکسٹ آیت نمبر 13، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ٹھیک ہے؟ پھر نہیں مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا. ثم، ثم بھی ایک حرف عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبرا از ایکول ٹو اکبر، کبرا از دا فیمینن فارم آف اکبر، ٹھیک ہے؟ فیمینن فارم آف اکبر، ٹھیک ہے؟ مونس. ثم کا ترجمہ پھر سے کرتے ہیں، یعنی پہلے ایک چیز ہو گئی اس کے بعد کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے لیے ثم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلی والی چیز جب ختم ہو گئی اس کے بعد اگلی چیز شروع ہوئی تو اگلی چیز سے پہلے ثم لے کر کے آتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر کہتے ہیں نا دین، THEN، تو ایسے ہی عربی میں ثم. لا یہ لائے نفی ہے نگیشن کے لیے، یموتو ماتا یموتو، یموتو فعل مضارے ہے، وہ مرے گا یا وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے نہیں مرے گا، لا یموتو وہ نہیں مرے گا. فی ہا، فی حرف جر ہوتا ہے جس کا ترجمہ میں سے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ضمیر پروناؤن لگی ہوئی ہے، ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو اس میں، فی ہا کا ترجمہ اس میں، لیکن اس کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟ نار کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، اس کا ناؤن کیا ہے؟ النار، رائٹ؟ اور چونکہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ النار مونس ہوتا ہے عربی زبان میں، اس وجہ سے اس کے لیے جو پروناؤن لے کر کے آئے وہ پروناؤن بھی فیمینن کا پروناؤن لے کر کے آئے. ماسکولن کا پروناؤن اگر لاتے تو کیا ہوتا؟ فی ہی، ٹھیک ہے؟ لیکن نار کے لیے ماسکولن یوز نہیں کر سکتے، مذکر یوز نہیں کر سکتے، بلکہ مونس یوز کرنا ہے، اس وجہ سے فی ہا، ٹھیک ہے؟ ان اٹ، انگلش میں اس کا ترجمہ ان اٹ سے کرنا پڑے گا، یا ان ہر سے، اگر لفظی ترجمہ کریں انگلش میں تو ان ہر، HER، ہر، ٹھیک ہے؟ اور ہر سے مراد کون ہے؟ جہنم کی آگ. ولا یحیا، اور نہ وہ جیے گا. تو حیات سب جانتے ہیں، اردو زبان میں بھی حیات زندگی کو کہتے ہیں، جینا زندگی، تو اس کا فعل مضارے بنتا ہے یحیا، ٹھیک ہے؟ وہ جیتا ہے یا وہ جیے گا، ٹھیک ہے؟ اور لا نفی لگا دیں تو وہ نہیں جیے گا، ٹھیک ہے؟ कोई मुश्किल, किसी को किसी किस्म की मुश्किल हो जरूर से पूछें। ठीक है, तो ना मरेगा ना जिएगा उस जहन्नम की आग के अंदर, क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो फिर दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा अजाब के लिए, और फिर उसके बाद अजाब इतना होगा कि फिर मर जाएगा, फिर दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद अजाब होता रहेगा। ना हमारे ईमान की हिफाजत करना है, ये ईमान के बहुत ज्यादा नुकसान का दौर चल रहा है, और इस दौर में ईमान बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है, और ऐसे ऐसे धोखों के जरिए से शैतान ईमान से महरूम कर रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा। दुनिया के खुशनुमाई के धोखे, राइट, दुनिया अच्छी हो जाएगी, कोई बात नहीं जी, ईमान की बात की अगर नफी कर दी तो क्या हुआ, सब चलता है, तो बोल देते हैं इस तरीके की बातें, तो उससे क्या होता है, ईमान जाया हो जाता है। अब जब ईमान चला गया ना, तो फिर जन्नत चन्नत सब खत्म, सब खत्म हो गई, सारे वो बागो बहार के किस्से खत्म, फिर अब यही वाला मामला हो जाएगा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, अगर ईमान चला गया। ठीक है, तो ईमान सबसे अहम चीज है, इसको खामखा की एफिलिएशंस के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहिए इस ईमान को, सही, बहुत बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कद अफलह मन तज़क्का, यानी जिंदा रहने का कोई आराम यूज उसे हासिल नहीं होगा। हाँ, जिंदा रहने का कोई फायदा उसे हासिल नहीं होगा, जिंदगी उसकी मौत से ज्यादा बुरी होगी। ठीक है, जैसे मुहावरा मुहावरतन कहते हैं ना कि जी मेरी तो जिंदगी मौत से ज्यादा बुरी है, तो जहन्नम के अंदर वो जिंदगी भी ऐसी ही होगी, मौत से ज्यादा बुरी। मौत मांगेगा बंदा, जहन्नमी मौत मांगेगा, लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। ठीक है, या अगर आएगी भी तो दोबारा से उसको जिंदा कर दिया जाएगा। ठीक है, कद अफलह मन तजक्का, यकीनन उसने फलाह पाई जो पाक हुआ। कद ये तहकीक के लिए आता है, यानी एम्फेसिस के लिए, ठीक है, तहकीक के माने में आता है, और इसका तर्जुमा यकीनन से ही करते हैं उर्दू जुबान के अंदर। कद जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है, एक तरीका उसका यह है कि फेले माजी से पहले भी उसको लाते हैं, जैसे अफलाह जो है वो फेले माजी है, असल माजी का फेल है, जिसका तर्जुमा होता है वो कामयाब हो गया, अफलाह वो कामयाब हो गया, या उसने फलाह पाली, कद अफलाह यकीनन उसने फलाह पाली। ठीक है, मन जिसने या जो, ठीक है, मन वही इसम मौसूला जो अभी अभी पढ़ा था हमने, इसम मौसूला है जिसका तर्जुमा जो से करते हैं, फिर उसके बाद है तजक्का, जो पाक हुआ। तस्किया, तस्किया से ये लफ्ज निकला, और तस्किया का मतलब होता है पाक हो जाना, सुथरा हो जाना। ठीक है, और ऐसा सुथरा हो जाना कि अंदर से सुथरा हो जाना। ठीक है, तस्किया का मतलब क्या होता है, अंदर से पाक हो जाना, ऊपर से खाली नहीं, अंदर से। ऊपर से जो चीज पाक होती है ना उसको क्या कहते हैं, या ऊपर से जब सफाई होती है उसको अरबी में क्या कहते हैं, किसी को याद है वो लफ्ज, जब ऊपरी सफाई होती है उसको तस्किया नहीं कहते, नहीं उसको तहारा भी नहीं कहते, जो ऊपरी सफाई होती है उसको कहते हैं तस्फिया, सफाई का लफ्ज इसी से पता लग रहा है, तस्फिया, ता सौद। ठीक है, और तज़किया जो होता है वो अंदर से निचोड़ के, जो कपड़ा जब गंदा हो जाता है ना तो कपड़े के ऊपर आप डस्टिंग नहीं करते, राइट, कपड़े के ऊपर कभी कोई डस्टिंग करता है, राइट, लेकिन अगर शीशा जो है वो शीशे के ऊपर गर्द पड़ जाए या फर्नीचर के ऊपर डस्ट डस्ट पड़ जाए तो आप क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं उसकी, तो ऊपर ऊपर से डस्ट को साफ कर देते हैं, उसको कहते हैं तस्फिया। ठीक है, लेकिन अगर कपड़ा मैला हो जाए तो क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर गीला करते हैं, उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको निचोड़ते हैं, या अगर वॉशिंग मशीन में डालें तो वॉशिंग मशीन में साइकिल चलते हैं, खूब घुमाया जाता है उसको, निचोड़ा जाता है, तब कहीं जाकर कपड़ा साफ होता है, तो उसको कहते हैं तस्किया, राइट। तो तस्किया जो है ना वो आसान काम नहीं है, तस्किया के लिए निचोड़ना पड़ता है, तो निचोड़ने के लिए तैयार होंगे तभी फिर तस्किया होगा। तो लेकिन इससे फायदा क्या होता है, अल्लाह ताला कुरान में ऐलान फरमा रहे हैं कद अफलाह मन तज़क्का, कि ऐसी फलाह मिलेगी कि उसके बाद नाकामी का कोई तसव्वुर नहीं है, तो बस थोड़ा सा निचोड़ जाओ इस दुनिया के अंदर, आगे कामयाबी कामयाब रहोगे। فرمایا نیکسٹ آیت کے اندر. اچھا تزکا ذرا ایک کمپلیکیٹڈ ورب ہے, تو وہ انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے, ان کو بھی نہیں آ رہی ہے. آپ بھی کیا انڈیا میں تو نہیں ہے؟ آپ کا تو نام بھی مجھے نہیں پتا لگ رہا, ایم شیخ. اس لیے کہ عاطف صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے وہاں ٹرانسمیشن کی پرابلم ہو. ٹھیک, تو لوگ آواز کلیئر ہے جیسے کہ عمر صاحب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو تزکا ہو گیا, وہ پاک ہوا. اچھا اس کے بعد اگلی چیز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں, فلاح پانے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. ٹھیک ہے, اور ذکر کیا. اچھا بامحاورہ ترجمہ کیا, اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. ٹھیک ہے, تو لفظی ترجمہ واو وہی عطف کا جس کا ترجمہ اور سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے ذکرا. ذکرا یہاں پر فعل ماضی ہے, جیسے فتح ہوتا ہے, نصرا ہوتا ہے, غربا ہوتا ہے, اسی طرح ذکرا, اس نے ذکر کیا, اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے, کیا یاد کیا؟ اسم ربہی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسم ربہی, رب کے نام کو, اپنے رب کے نام. کیا ہے بھائی اپنے رب کا نام؟ اپنے رب کا کیا نام ہے جی؟ الرحمن, الرحیم, الودود. رب کا کیا نام ہے؟ یہ بھی نام ہے اللہ. ہاں رب کا نام ہے اللہ. ٹھیک ہے, ذاتی نام. ٹھیک ہے, جیسے ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے نا, لڑکے کا نام ہوتا ہے احمد, رائٹ, کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حمد کرنے والا ہے, اس کا ذاتی نام ہے احمد, ماں باپ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں البتہ وہ بڑا ایفیشنٹ ہے, وہ بڑا لمبا ہے, وہ بڑا جو ہے وہ صحت مند ہے, یہ سب صفاتی نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو صحت مند بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو لمبا بھی کہہ سکتے ہیں, احمد لمبو, رائٹ, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا احمد لمبو, تو لمبو جو ہے وہ اس کا صفاتی نام ہے, اصلی نام کو تھوڑی ہے, رائٹ, وہ تو اس کی صفت کی وجہ سے اس کا نام ہے. تو نام تو ہے اس کا احمد. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اللہ کا نام جو ہے الرحمن, الرحیم, یہ سب تو صفاتی نام ہے, اصل نام تو ہے اللہ کا اللہ, رائٹ. تو اس بندے کا جو فلاح پا گیا, اس کی اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا. اور ماشاءاللہ آج کے منطقی کیا کہتے ہیں, یہ جی نام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, نام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, صرف صفات کا ذکر ہوتا ہے, یا صرف لا الہ الا اللہ ذکر ہوتا ہے, صرف سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے, صرف الحمدللہ ذکر ہوتا ہے, نام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا, رائٹ. خیر اللہ سمجھتا فرمائے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, تو ذکرہ کا مطلب ہو گیا اس نے ذکر کیا, اس نے یاد کیا. اسم, اسم, اسم نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ کے اندر بھی یہی اسم آتا ہے. اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ حمزہ وصلی ہے, اس وجہ سے اس کو پرونانس نہیں کریں گے جوڑ کے پڑھنے کی صورت میں, جیسے کہ کل پچھلی کلاس میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے را کو سین کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اسما اس طرح سے. اچھا یہ جو ہے, اب یہ جو ہے اسما, یہ حالت نصب میں ہے, تو یہ مفعول بن رہا ہے. ذکرہ فعل کا مفعول بن رہا ہے, آبجیکٹ بن رہا ہے اس جملے کے اندر. ٹھیک ہے, اسم مفعول نہیں بن رہا, مفعول بن رہا ہے, آبجیکٹ بن رہا ہے ذکرہ فعل کا. تو اس نے ذکر کیا نام کا, کس کے نام کا؟ ربی ہی, اسم ربی ہی, نام اپنے رب کے, نام اپنے رب کا. ٹھیک ہے, تو رب جو ہے وہ پروردگار اللہ رب العزت, اور ہی جو ہے وہ جو ہی ہے وہ جو پوائنٹ کر رہا ہے, وہ کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟ ہی کی ضمیر. وہ کدھر پوائنٹ کر رہی ہے؟ وہ افلاح کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے نا, ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے افلاح کے اندر. تو ہو کی ضمیر یہاں پر جو ربی ہی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے, یہ بھی اسی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. یعنی جو کامیاب ہو گیا نا, اس نے یہ سارے کام کیا نا, کہ اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, تو ہو کی ضمیر جو لگی ہوئی ہے نا رب کے ساتھ, تو وہ اسی بندے کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے جو کامیاب ہو گیا, یعنی افلاح میں جس کا ذکر ہے وہی. تو رب ہی اپنا رب, اپنے رب کا, اسم رب ہی. इसम मुजाफ बन रहा है, रब जो है वो मुजाफ इलेही बन रहा है, ठीक है, इसम का। फिर उसके बाद रब जो है वो मुजाफ बन रहा है और ही की ज़मीर जो है वो उसका मुजाफ इलेही बन रही है, तो इस तरह से एक चेन बन रही है। फिर उसके बाद फसल्ला, फा जो है यहाँ पर सुम्मा के मानी में है, या फा जो है वो हर्फ अतफ है जिसका यहाँ पर तर्जुमा फिर से करेंगे, ठीक है, पस से नहीं करेंगे बल्कि फिर से करेंगे, यानी देन, ठीक है। सल्ला, सल्ला का मतलब उसने नमाज पढ़ी, ठीक है, सलात पढ़ी उसने, सलात अदा करी। क्या इससे अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब लगाना साबित नहीं होता? जी हमारे मशायख तो करते हैं साबित, तो जिसके समझ में बात ना आए तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस भी आ जाती है जिसके अंदर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक दुनिया के अंदर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई ये मशायख के लिए ये दलीलें काफ़ी हैं, जो नहीं करना चाहते ना करें, उससे क्या होता है। तो इसमें रब के का जिक्र जो है वो कुरान के अंदर एक से ज़्यादा जगहों पर आया है, और सूरह मुजम्मिल के अंदर भी, राइट, दूसरी चीज़ दूसरी जगह जो कम अज़ कम ये है। तो सल्ला का मतलब उसने नमाज पढ़ी, ठीक है, फसल्ला, बस उसने नमाज पढ़ी, ठीक है। तो कामयाब होने वाले की फिर अल्लाह ताला ने तीन सिफात बयान कर दी। सबसे पहली और जो पहली चीज़ आती है कुरान के अंदर ना, वो सबसे अहम होती है, ठीक है। तो तज़किया करना, ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई, सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नाम का जिक्र करना, ठीक है, अल्लाह के नाम का जब जिक्र करेगा ना तो क्या होगा, ये बताएं। माशाल्लाह सूफिया कराम मौजूद हैं कोई क्लास में, तो सूफिया कराम जरा बताएं जकर अस्मा से क्या होता है, जकर अस्मा से क्या अचीव होता है, इस्मा रब्बी ही, अल्लाह के नाम का जिक्र करने से क्या मिलता है, अल्लाह मिलता है, जलूल कुलूब, क्या मतलब जलाउल कुलूब, जलाउल कुलूब जला कहना चाह रहे हैं, तलब की जला, तलब की जिंदगी, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो हाँ आपका जवाब सही है, हाँ तलब की जिंदगी, ठीक है। क्योंकि तलब जो है ना इससे पहले मरा हुआ होता है, उसको कोई न्यूट्रिशन मिल नहीं रही होती है, ठीक है, और उसके ऊपर गुनाहों का बोझ मलबा उसके ऊपर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, मलबा, तो मलबे के नीचे क्या चीज़, यानी मरा हुआ ही होता है तकरीबन, ठीक है, बिल्कुल मरा हुआ नहीं होता, इसलिए कि मुसलमान तो होता है ना, तो बिल्कुल नहीं मरा हुआ होता, लेकिन गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ होता है उसका दिल, ठीक है। तो जब अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं, नहीं नफ्स रोशनी मरता उससे, ठीक है, अल्लाह के नाम का जब जिक्र करते हैं ना तो उससे क्या होता है, उससे होता है तस्फिया कल्ब, हाँ माशाल्लाह तस्फिया कल्ब, ठीक है। अभी पीछे हमने तज़किया, तज़किया नफ्स की बात करी अल्लाह ताला ने, बल्कि हमने क्या बात करी, अल्लाह ताला ने तज़किया नफ्स की बात करी, अब बात कर रहे हैं तस्फिया कल्ब की, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से तस्फिया कल्ब होता है, तज़किया नफ्स नहीं, तज़किया नफ्स अलग चीज़ है, तस्फिया कल्ब, ठीक है। दिल के ऊपर से जो गुनाहों की गंद होती है ना, वो गंद हटती है, दिल को जिंदगी मिलती है, राइट, वो जीना शुरू होता है, वो फिर कुछ अंगड़ाई लेकर के जरा फिर वो जरा फैलता है, फिर वो कुछ काम करता है, किसी कुछ करने के काबिल होता है, हाँ दिल को हलावत मिलती है, हलावत का मतलब यही है कि उसको जिंदगी मिलती है, ताकत मिलती है। तो तस्फिया कल्ब में ये सारी चीजें आ जाती हैं, तस्फिया कल्ब, कल्ब का तस्फिया होता है, कल्ब का तस्किया नहीं होता। कल्ब जो है ना वो फर्नीचर की मानिंद है जिसके ऊपर आप डस्टिंग करते हैं, ठीक है, वो अंदर से मैला नहीं होता, कल्ब ऊपर से मैला हो जाता है, ठीक है। और नफ्स जो है ना, ये यानी जब गंदा होता है तो ये कपड़े की तरह नजिस हो जाता है, जैसे कपड़ा नजिस होता है, अंदर ही उसके नजासत पैवस्त हो जाती है उसके अंदर, तो फिर उसको निचोड़ना पड़ता है नफ्स को। और फिर तीसरी चीज़ क्या बयान फरमाई, अफलाह वाले बंदे की, कि वो नमाज पढ़ता है, ठीक है, और नमाज के अंदर फिर माशाल्लाह वो यानी सबसे कामिल इबादत जो है वो नमाज की इबादत हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल इबादत। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं बल तो तुसिरून अल हयात दुनिया, ये सारी चीज़ें तुम सुन लेते हो, सारी चीज़ें तुम्हें पता चल गई, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मामला क्या है कि ऑन द कॉन्ट्ररी, बल बल्कि, ठीक है, तो अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, करना तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ये तीन चीज़ें करनी चाहिए थी, तस्किया नफ्स करना चाहिए था, तस्फिया कल्ब करना चाहिए था, राइट, और इबादत करनी चाहिए थी, लेकिन करते तुम क्या हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। तो उसे रोना, तो बल का तर्जुमा तो बल्के से करते हैं, उर्दू का बल्के जो है ना वो अरबी के बल से ही हमने अडॉप्ट किया उर्दू के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्ररी यानी उस ऑपोजिट मामला बयान करने के लिए बल का लफ्ज या बल्के का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है तो सिरूना, ठीक है। तो सिरूना ये असल में क्या था, ये असल में ये फेले मुजारे का सीगा है, यु सिरू वो तरजीह देता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो टेंस यूज हो रहा है, ये टेंस अल्लाह ताला ना क्योंकि लोगों से मुखातिब होकर के कह रहे हैं ना, डायरेक्टली लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं, तो इस वजह से इसमें सेकंड पर्सन प्लूरल यानी जमा मुदक्कर हाजिर का सीगा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं इंसानों से, तो उमूमन मुदक्कर का ही सीगा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि औरतें भी मुखातिब हैं इसमें, लेकिन औरतों का जिक्र जो है वो मर्दों के तहत आ जाता है, ताबे होता है उमूमन, हमेशा नहीं लेकिन उमूमन औरत का जिक्र जो है वो मर्द के ताबे होता है। तो मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया, और क्योंकि मुखातिब हो रहे हैं इस वजह से हाजिर का सीगा इस्तेमाल किया, और सब लोगों से मुखातिब हो रहे हैं इस वजह से जमा का सीगा इस्तेमाल किया। तो से रूना जैसे तुफ अलूना, ठीक, यफ अलूना, यफ, हाँ, तफ अलूना, तो ये यानी वर्ड फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से ये तो से रूना के वजन पर है, लेकिन है जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। तुम तरजीह देते हो, क्योंकि असरा युसरू का मतलब होता है प्रिफर करना, तरजीह देना किसी चीज को, ठीक है। इसी वजह से ईसार का लफ्ज, ईसार का मतलब क्या होता है, अपनी जरूरत के ऊपर किसी दूसरे की जरूरत को तरजीह देना, मुकद्दम करना, इसी को ईसार कहते हैं। तो सिरूना यहाँ पर है कि तुम तरजीह देते हो, यानी तुम सब लोग तरजीह देते हो, किस चीज को तरजीह देते हो, अल हयात दुनिया, ठीक है, दुनिया की जिंदगी को। तो अल हयात दुनिया तो सिरूना फेल का मफूल बन रहा है, ठीक है, कि तुम लोग तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को, अल हयात दुनिया, हयात ये इसम है जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, और दुनिया सब जानते हैं कि आखिरत के अलावा जो जिंदगी का वक्त होता है उसको दुनिया की जिंदगी कहते हैं, बल्कि मौत से पहले पहले जो टाइम होता है इंसान का उसको दुनिया की जिंदगी कहते हैं, फिर उसके बाद बरजख की जिंदगी शुरू हो जाती है, और बरजख के बाद फिर आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाती है। अभी अभी चूंकि मेरी नज़र से एक अहम इबारत गुजरी थी, तो अकीदे के लिए चूंकि वो बहुत अहम है, तो अल्लाह ने याद दिला दिया, तो आपके सामने रख देते हैं कि सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने सबको अपनी रजा अता फरमा दी, ठीक है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदु अन, ठीक है, और अल्लाह ताला सहाबा कराम से अगर कोई गलती हो भी गई तो सारे सहाबा कराम ने तौबा भी कर ली उस गलती से, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे वाकयात हैं, हदीस की रूह में तो नहीं कहेंगे लेकिन सहाबा कराम के बताए हुए वाकयात हैं कि किसी सहाबी को उनकी मौत के बाद कुछ अजाब हुआ, राइट, किसी सहाबी को उनकी मौत के बाद कुछ अजाब हुआ, राइट। तो अब ये बात शैतान इस्तेमाल करके हमारे दिल में ये वसवसा डाल सकता है कि इसका मतलब है कि सारे सहाबा की मगफरत नहीं हुई, राइट, सारे सहाबा जो है वो उनको अल्लाह की रजा नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि अजाब वाले सहाबे भी मौजूद हैं। तो इसका जवाब, ठीक है, इसका क्या जवाब दिया उलमाए किराम ने कि ये जो उनको अजाब का तस्करा आता है ना, हम उसका इनकार नहीं कर रहे कि नहीं नहीं झूठ है झूठ है, नहीं उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये जो अजाब है ना, ये अजाब आखिरत का अजाब नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज हुई जिससे कि उनको तौबा की का मौका नहीं मिला, मोहलत नहीं मिली, ठीक है, कोई ऐसा मामला हो गया उनके साथ कि जिसकी वजह से मरने के बाद उनको जो अजाब, उनको अजाब हुआ, ठीक है, लेकिन वो अजाब कब का अजाब है, वो आलम बरजख का अजाब है, ठीक है, आलम बरजख का अजाब, वो आखिरत का अजाब नहीं है। आलम बरजख के अंदर जो अजाब होता है इंसान को, ठीक है, वो अजाब उसके उस गुनाह के मगफिरत का सबब बन जाता है, ठीक है, यानी कब्र के अजाब गुनाह की मगफिरत का सबब बन जाता है। इसकी एक मशहूर मिसाल मौलाना तकी उस्मानी साहब दान वकातों की किताब में गालबन मैंने पढ़ा था कि एक सहाबी अपनी मौत के बाद किसी दूसरे सहाबी की के ख्वाब में आए, ठीक है, और उन्होंने उनको कहा कि मुझे अजाब हो रहा है, इसका इंतज़ाम करो, ठीक है। तो वो उनकी उंगली के अंदर से खून निकल रहा था, ठीक है, इस हालत में वो ख्वाब में नजर आए थे। तो जब दूसरे सहाबी को वो ख्वाब में नजर आए तो फिर उन्होंने मालूम किया, तो पता चला कि इनके साथ मामला ये हुआ था कि ये जिहाद में ना ये शहीद हुए थे, यानी जख्मी हुए थे जिहाद के अंदर। तो उन जख्मों की वजह से इनको इतनी शदीद तकलीफ हो रही थी कि इन्होंने ना उस तकलीफ की वजह से अपनी उंगली को मुंह में दबा करके अपने दांतों से काट लिया था, ठीक है, अपनी उंगली को दांतों से काट लिया था, ठीक। तो ये बात जो है ना उनके ऊपर इस अजाब का सबब बन गई, क्योंकि अपने जान को नुकसान पहुंचाना किसी तकलीफ की वजह से या मायूसी की वजह से, ये खुदकुशी की शक्ल की एक चीज होती है, ये खुदकुशी तो नहीं है लेकिन खुदकुशी की शक्ल की चीज है। तो उनको इसकी वजह से अजाब हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया, ये अल्लाह ही ने किया ना कि वो इन सहाबी के ख्वाब में आए, और फिर इन सहाबी ने, मुझे जहां तक याद पड़ता है, शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया और उनकी फिर मगफिरत का सामान किया गया, उनकी ये दुआ की गई, ठीक है। तो उनकी फिर उनके ऊपर से ये अजाब अल्लाह ताला ने हटा लिया, ठीक है ना। तो इस किस्म के वाकयात हुए हैं, लेकिन इन वाकयात की एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये आखिरत का अजाब नहीं है, ये बरज़ख का अजाब है। तो अगर कभी इस किस्म का वाकया आपके आपके सामने से गुजरे तो उसकी वजह से सहाबा कराम की शान में कोई गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में किसी शक व शुबे में मुब्तला होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अकीदे की सलामती के लिए, ईमान की सलामती के लिए अहम, यानी बहुत अहम बातों में से एक बात है सहाबा कराम के बारे में बिल्कुल क्लियर रहना, ठीक है। तो ये हो गया वज़ाकर रसूलुल्लाह हयात दुनिया, हाँ, वल आखिरतु खैरुं व अबका, और आखिरत खैर है और अबका है, ठीक है, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। तो आखिरत क्या चीज़ होती है, आखिरत वो चीज़ होती है जो कि आखिर में आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर अल आखिरत का जो लफ्ज़ है तो अलिफ लाम लगने से डेफिनेट हो जाती है चीज़, तो किसी डेफिनेट आखिर की चीज़ की बात हो रही है। तो वो आखिर की चीज़ क्या है, जो कि दुनिया के खत्म होने के बाद अल्लाह ताला एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो जो हशर का मैदान है वहां पे हिसाब किताब का मामला है, फिर उसके बाद पुलिस सरात है, फिर उसके बाद जहन्नुम में जाना या जन्नत में जाना, ये सारा का सारा मामला क्या है, आखिरत है ये, ठीक है। तो आखिरत में हशर का मामला भी आ जाता है, पुलिस सरात का मामला भी आ जाता है, और जन्नत और जहन्नुम ये सब कुछ इसके अंदर शामिल हो जाती है इस आखिरत के अंदर, क्योंकि सब कुछ जो है वो दुनिया के बाद है, बल्कि बरज़ख की भी बात है, जैसे अभी बात हुई कि बरज़ख के बाद जो है वो आखिरत शुरू होगी। तो बरज़खी अजाब अलग चीज़ होता है और आखिरत का अजाब अलग चीज़ होती है। तो सहाबा में से किसी को आखिरत का अजाब हरगिज़ हरगिज़ नहीं होगा, अगर किसी को कुछ हुआ भी तो वो बरज़ख की हद तक महदूद है। वल आखिरतु, ठीक है, खैरुन, तो खैरुन क्या चीज़ होती है, खैरुन का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, ये भी एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री है, इस्म तफ़दील, ठीक है। तो वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे पूछूंगा नहीं, वरना दिल बड़ा चाह रहा है कि आप लोगों से पूछूं कि खैरुन क्या होता है असल में, ठीक है। तो पीछे आप लोगों को बताया है कि खैरुन असल में होता है अखियरु, अकबरु के वजन पर अखियरु, ठीक है, यानी ज्यादा बेहतर, ठीक है, ज्यादा बेहतर अखियरु, ठीक है, क्योंकि लफ्ज खैर का असल मतलब होता है बेहतरी, भलाई, तो अखियरु का मतलब ज्यादा भलाई, ठीक है, बेटर, बिल्कुल सही कह रहा है, बेटर, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो एक्चुअली होती है ना वो कंपैरिजन में होती है, ठीक है। अंग्रेजी में ना कहते हैं ना बेटर के बाद क्या आता है, बेस्ट आता है, ठीक है ना। तो हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जी बेस्ट जो है वो कोई अलग चीज़ है और बेटर जो है वो कोई अलग चीज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बेटर का मतलब होता है कि किसी दूसरे से आप कंपेयर करके कह रहे हैं कि जी उससे ज़्यादा बेहतर है, और बेस्ट का मतलब होता है कि बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो दोनों ही एक्चुअली कंपैरिजन ही में है, ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि बेटर के अंदर आप चंद से कंपेयर कर रहे हैं और बेस्ट के अंदर आप बाकी सब से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही इसम तब्दील है असल में। तो खैर का मतलब होता है असल में अखियर, ज्यादा बेहतर, दुनिया की जिंदगी से ज्यादा बेहतर, ठीक है। वलल आखिरत क्या है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अनका विजरक अल्लज़ी अंत, क्या है, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی ہی زندگی میں ٹھیک ہے والآخرت تو خیر لک من الاولا، ٹھیک ہے کہ آپ کے جو دنیا کی زندگی میں بعد میں آنے والا وقت ہے وہ آپ کی دنیا کی زندگی کے پچھلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی آپ مستقل پروگرس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو بہتری ہے نا وہ دنیا ہی کی زندگی میں، یعنی اللہ والوں کی دنیا کی ہی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت تو پھر کتنی اچھی ہوگی جب دنیا ہی کی زندگی کتنی اچھی ہو جاتی ہے، تو خیر کا مطلب ہے زیادہ بہتر، اور ابقا، ابقا مطلب زیادہ باقی رہنے والی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اصل میں تھا ابقیو، اکبرو کے وزن پر ابقیو، زیادہ باقی رہنے والی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی کبھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ نہیں، بلکہ کمپیئر ٹو دنیا کی زندگی وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے، اگرچہ کہ دوسرے نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بقا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بقا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نصوص سے پتہ لگتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر اس لفظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جی بس ریلیٹیولی اسپیکنگ زیادہ باقی رہنے والی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی بات ہو گئی کہ لفظی ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا 17 آیت ہو گئی، کوئی سوال ہے؟ ذرا تیز چل رہا ہوں، سورت بھی لمبی ہے، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد دو آیتیں رہ گئی ہیں، اب ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں، یعنی بے شک یہ ہے پہلے صحیفوں میں۔ اب یہاں پر جو انا ہے نا یہ ہے بے شک والا انا، ٹھیک ہے شعیب صاحب؟ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بے شک سے کرتے ہیں۔ انا ھذا اسم اشارہ کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ھذا اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ یہ سے کرتے ہیں، اور انگلش میں دس، ٹی ایچ آئی ایس، دس۔ لا فی، یہ دو الفاظ ہیں، لام تاکید والا نام، نام تاکید ایمفسس کے لیے، تو اردو میں ترجمہ اس کا البتہ سے کر دیتے ہیں، البتہ، اور اس کا مطلب تاکید ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فی حرف جر ہے جس کا ترجمہ میں سے کرتے ہیں، تو لفی البتہ میں۔ الصحف الاولی، صحف صحیفے کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد جو ہے پیمفلٹس، فلائرز، ٹھیک ہے، کوئی کسی پارشمنٹس، اس طرح کی ساری چیزیں پھر اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، تو صحیفے کی جمع صحف ہے۔ الاولی، ٹھیک ہے، اولی کا ترجمہ اردو میں جیسے کرتے ہیں اول، ٹھیک ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ خیر اولا کا ترجمہ وہی پہلے، یعنی اول، ٹھیک ہے، جس کا مطلب اول سے ہم اردو میں کرتے ہیں، فرسٹ، پریویس، ٹھیک ہے، تو صحف الاولا یعنی پاسٹ، صحف پاسٹ صحیف ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے، تو ان صحف الاولی کی پھر اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کر دی کہ یہ کون سے والے صحیفوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفہ ہے، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف تورات نہیں آئی تھی بلکہ کچھ، یا تو یہ تورات بھی اس میں شامل ہے یا یہ کہ تورات کے علاوہ کچھ صحیفے بھی آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو صرف صحیفے آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ترجمے کے متعلق؟ اچھا چند منٹ اگر آپ دے دیں کوئکلی خلاصہ تفسیر پڑھ لیں، دیر ہو گئی ہے۔ خلاصہ تفسیر میں پڑھتا ہوں، تھوڑا میں مکمل نہیں کریں گے، تھوڑا بہت چھوڑ دیں گے، تین چار منٹ ابھی استعمال کر لیتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر معرف القرآن کے اندر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ بیان القرآن کے اندر جو پرانے الفاظ تھے، متروک، مشکل الفاظ تھے، ان کو انہوں نے اپنے دور کے الفاظ میں ڈھال لیا ہے، لیکن ہے یہ بیان القرآن ہی۔ تو خلاصہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، سب بحسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ और जो मोमिन आपके साथ हैं, यानी आप और आपकी पूरी जमात अपने परवरदिगार आलीशान, आलीशान का मतलब क्या होता है, शान वाला, ऊंची शान वाला, आली यानी ऊंची, और शान का मतलब यानी शान कहते हैं यानी उर्दू में जो शान जिस चीज को कहते हैं उसी को शान कहते हैं, लेकिन एक रोजाना जैसे एक नई शान कहते हैं ना जी, कि एक नई खूबसूरती के साथ कोई आए, ठीक है, जैसे हमारे हजरत कहते हैं कि हाँ शान इज्जत के माने में होता है, लेकिन नहीं इज्जत खाली नहीं, बल्कि एक एक नई सूरत, एक नई इज्जत, एक नया मुकाम, एक नई, ठीक है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, कि हर दिन अल्लाह ताला की एक नई शान है, एक नया चेहरा है, एक नया रूप है, यानी एक नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का चेहरा तब्दील नहीं हो रहा, मतलब ये कि अल्लाह की इज्जत और शान जो है ना वो रोजाना तब्दील होती है। हमारे इज्जत इसके ऊपर एक एक बड़ा ही ऊंचाई, हाँ हमारे इज्जत इसके ऊपर मिसाल देते हैं कि जैसे जब नई नई शादी होती है तो दुल्हन जो है ना वो रोजाना एक नया लिबास पहन के आती है, राइट, तो रोजाना उसकी एक नई शान होती है, तो इससे समझाते हैं एक नया रूप, वही इज्जत का रूप और शान का रूप है। तो आली शान यानी ऊंची शान वाला रब, उसके नाम की तस्बीह और तकदीस कीजिए, जैसे सुभान अल्लाह, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह हो गई अल्लाह ताला के नाम की, जिसने हर शय को बनाया, अल्लदी खलका फसव्वा, फिर उसको ठीक बनाया, ठीक है, अब इसकी तफसीर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, यानी हर शय को मुनासिब तौर पर बनाया, यानी बिल्कुल सही सही मुनासिबत के साथ, प्रोपोर्शंस के साथ बनाया, इम्प्रोपोर्शनेट नहीं बनाया, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी तफसील, बल्कि इस आजिज़ ने बयान भी किए हैं इस टॉपिक के ऊपर, कि भाई फिर इतने सारे हमें जो माजूर लोग नज़र आ जाते हैं ना, रिटार्डेड बच्चे नज़र आ जाते हैं, तो वो फिर कहाँ से आ गए, जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि फसोवा, ठीक ठीक बनाया, तो वो अनठीक लोग कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी तफसील तो फिर हम किसी और ही वक्त आपके सामने रिपीट करेंगे, अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं, कि जिसने जानदारों के लिए उनके मुनासिब चीज़ों को तजवीज़ किया, यानी वल्लज़ी कद्दरा, कद्दरा का मतलब हो गया कि जानदारों के लिए उनके मुनासिब चीज़ों को तजवीज़ किया, यानी जो जो उन्होंने करना है वो उन सारी चीज़ों को तजवीज़ किया उनके लिए, यानी डिसाइड कर लिया कि इसने ये करना है, इसने ऐसे करना है वगैरह, फिर उन जानदारों को उन चीज़ों की तरफ राह बतलाई, यानी उनकी तबाए में, तबीयतों में उन अशिया का तकाजा पैदा कर दिया, ठीक है। फहदा, ये सब फहदा के तर्जुमे में, ये तफसीर में राह बतलाई, ठीक है। तो जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर हिदायत से मुराद दीन इस्लाम की हिदायत नहीं है, यहाँ पर हिदायत से मुराद अच्छाई और बुराई की राह बतला देना, ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर हिदायत से मुराद है कि जो तबीयत के अंदर हर मखलूक के अल्लाह ताला ने एक पैदा कर दिया है कि जी उसने क्या करना है यहाँ पे आकर के, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ये पहले दर्जे की हिदायत कहलाती है, बिल्कुल बेसिक दर्जे की हिदायत जो अल्लाह ताला ने हर मखलूक को दी है, ठीक है, अलबत्ता इंसान को सबसे कम दी है, क्योंकि तो इंसान जो है ना वो बेसिक भी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, जबकि जानवर जो होता है वो अपनी सारी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर लेता है खुद ब खुद, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत में सारी इन्फॉर्मेशन डाली होती है, जबकि इंसान का बच्चा जो है उसको चलना भी सिखाना पड़ता है, उसको खाना भी सिखाना पड़ता है, कुछ भी नहीं आता उसको, सिर्फ रोना आता है, तो रोना कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत के अंदर रोना बना दिया है, बेचारा बड़े होकर के वो भी भूल जाता है, तो इंसान का क्या कहना। खैर, उनकी तबाही में अशिया का तकाजा पैदा कर दिया है, तो हदा के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद वल्लजी, और जिसने अखरज अल मरआ, तो और जिसने सब्ज खुशनुमा चारा जमीन से निकाला, फिर उसको स्याह कूड़ा कर दिया, फजअलहु गुसाअन अहवा, अहवा आपको बताया था ना कि एक बहुत काला स्याह। अच्छा, तो सब्ज पहले होता है जब जमीन से उगरा होता है, या जमीन में जब तक वो लगा हुआ होता है तो सब्ज होता है, या पानी डालना छोड़ दें तो फिर वो वहीं पे सूखना शुरू हो जाता है, या काट करके अलग रख दें तो वो सूखना शुरू हो जाता है, और सूख करके बिलाखिर काला हो जाता है। अच्छा, अब इसकी तफसीर में जो लिख रहे हैं बस यहीं तक पढ़ लेते हैं, आज ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है कि अव्वल आम तसर्रुफात मज़कूर हैं, तसर्रुफात का मतलब आम चेंजेस, आम यानी दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने खलका की बात करी तो सारी मखलूक इसके अंदर आ गई। फिर उसके बाद हैवानात के मुतालिक, ठीक है, तो वल्लदी कद्दरा फहदा, इसमें मुफ्ती ये मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि वल्लज़ी कद्दरा फहदा जो है ना, इसमें फिर हैवानात का जिक्र पाया जाता है, और उसके बाद अखरज अल मरआ, इसके अंदर नबातात का जिक्र पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि ताआत के ज़रिए आखिरत की तैयारी करना चाहिए, जहाँ अमाल पर जज़ा व सज़ा होने वाली है, और इसी ताआत का तरीक़ा बताने के लिए हमने कुरान नाजिल किया है और आपको इसकी तबलीग के लिए मामूर किया है। सो इस कुरान की नस्बत हम वादा करते हैं कि सनुक़रिऊ का फ़ला तंसा, लेकिन ये इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई अगर इमीडिएट सवाल किसी को है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास में। ठीक है, चलें क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।